प्यारे साथियों नमस्कार। 2 दिसंबर 2015 के इस एकेडमी फॉर एक्सीलेंस के डेली ऑडियो गाइडेंस में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं एकेडमी फरवरी 2016 में 15 दिन की क्लासेस ऑर्गेनाइज करने जा रही है जिसके लिए एडमिशन्स रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। तो इसके लिए 3 साथियों ने कल रजिस्ट्रेशन कराए हैं, मैं इन साथियों का भी हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। इन दोस्तों के नाम हैं राजेश गहलोत जो ब्यावरा मध्य प्रदेश से हैं, प्रीति चौहान आप बागपत उत्तर प्रदेश से हैं और मयंक कुमार आप सागर मध्य प्रदेश से हैं। तो राजेश, प्रीति और मयंक आप तीनों साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों मुझे ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के जो अभी प्री के रिजल्ट आउट हुए हैं उसमें काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इस एकेडमी से जुड़े रहे हैं, चाहे वो सीधे क्लास से जुड़े हुए हों या फिर वो डेली ऑडियो के माध्यम से जुड़े हुए हैं। तो वो लगातार हम लोगों को ये सूचित कर रहे हैं अपनी सफलता के बारे में और साथ ही खासकर एकेडमी के प्रति वो अपना आभार और धन्यवाद भी व्यक्त कर रहे हैं। तो मुझे 4 ऐसे साथियों के नाम मिले हैं जिन्होंने राजस्थान के प्री एग्ज़ाम को अभी क्वालिफाई किया है। इनमें से एक हैं प्रदीप कुमार सिंह दिल्ली से, दूसरे हैं पवन कुमार आप सूरजगढ़ राजस्थान से हैं और तीसरे हैं तेज राम टेलर और चौथे हैं राजा राम जी, आप दोनों राजस्थान से ही हैं। तो प्रदीप, पवन, तेज राम और राजा राम आप सभी को मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से, हमारे सभी प्रिय श्रोताओं की ओर से, मैडम की ओर से और अपनी ओर से बहुत बहुत इस सफलता के लिए हार्दिक बधाई देता हूँ। साथ ही शुभकामनाएं भी देता हूं कि मेंस को भी आप क्वालिफाई करें और डेफिनेटली हमें सूचित करें कि आपने मेंस क्वालिफाई कर लिया है, ताकि हम लोग फिर से आपको बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं भी प्रेषित कर सकें, खासकर इंटरव्यू में सफलता के लिए। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं भी। फ्रेंड्स अब मैं आता हूं अपने नेक्स्ट स्टेज पर। आज मैं आपसे कुछ अलग तरीके की बात करना चाह रहा हूं और ये जो अलग तरीके की बात है वो इंटरेस्टिंग इस मायने में है कि मैं एक फिल्म पर बात करने जा रहा हूं। और मित्रों ये फिल्म जो है, मैं जानता हूं कि यदि मैं प्रेम रतन धन पायो फिल्म पर बात की होती तो वो आप लोगों के समझने में ज़्यादा आसानी होती, क्योंकि वो बड़ी सुपरहिट फिल्म रही है और मुझे लगता है कि जितने भी श्रोता मुझे सुनते हैं उनमें से ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने और ज़्यादातर लोगों ने जरूर प्रेम रतन धन पायो फिल्म देखी है। हालांकि मैं उनमें से नहीं हूँ और मैं ये फिल्म नहीं देख सका हूँ। मैं आज जिस फिल्म पर बात करने जा रहा हूँ वो एक तरीके से सुपर फ्लॉप फिल्म है। अनफॉर्चुनेटली ये फिल्म नहीं चली, जबकि मुझे लग रही थी कि ये फिल्म चलेगी। और जब मुझे इस बात की खबर मिल गई कि ये फिल्म सुपर फ्लॉप है, तब सही पूछे तो मैंने इस बात का फैसला किया कि नहीं, तब तो मुझे ये फिल्म देखनी ही चाहिए। और खासकर जब मेरे बेटे और बहू इस फिल्म को देख करके आए तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि पापा ये फिल्म आपको जरूर देखनी चाहिए। और मित्रों मेरे लिए एक विचित्र सी बात ये भी थी कि मैं अकेले, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कि मैंने कभी कोई फिल्म देखी हो, और जब भी फिल्म देखने की बात आती है तो पत्नी तो साथ में ही होती हैं, लेकिन चूंकि अभी मेरी पत्नी रायगढ़ छत्तीसगढ़ गई हुई हैं तो फिर ये पहली फिल्म है जो सुपर फ्लॉप थी और फिर मैंने अकेले देखने की हिम्मत की। मैं हिम्मत शब्द जानबूझ करके कह रहा हूं, क्योंकि अदरवाइज ऐसी जगहों पर अकेले जाने में थोड़ी सी बोरियत लगती है, मजा भी नहीं आता फिल्म देखने में, ग्रुप में ज्यादा अच्छा लगता है। और फिर और एक ऐसी फिल्म जो अपने आप में कहा जा रहा था कि बहुत ही बोरियत वाली फिल्म है, तो अब आप सोच करके देखिए कि मैंने कितना बड़ा रिस्क मोड़ लिया। लेकिन मुझे लगता है मित्रों कि मैंने सही किया, और यदि मैंने ये फिल्म नहीं देखी होती तो शायद मैं एक इससे भी कहीं कई गुना ज्यादा बड़ा रिस्क मैंने लिया होता। दोस्तों ये जो फिल्म है इस पर बात करने के लिए तो बहुत बहुत अधिक है। सच पूछिए तो ये जो फिल्म है हई जीवन के ऊपर है, हालांकि सारी फिल्में जीवन के ऊपर होती हैं, जीवन के ऊपर जब फिल्में बनती हैं तो डेफिनेट उसमें फिर इंटरटेनमेंट भी होता है, कुछ बहुत जबरदस्त किस्म का फिक्शन भी होता है, मतलब जिस पर आप यकीन नहीं कर सकते, ऐसी कहानियां उसमें जुड़ जाती हैं। लेकिन इसको जो मैंने कहा कि ये फिल्म पूरी तरह से जीवन पर बनी फिल्म है, वो इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि इसमें कोई फिक्शन नहीं है, हालांकि है ये कहानी ही, लेकिन जो भी बातें कही गई हैं वो जीवन की बड़ी गहरी सच्चाइयों से हमको परिचित कराती हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि जो हमारा परिचय है वो बड़े फिलोसॉफिकल लेवल पर होता है, इंटरटेनिंग लेवल पर नहीं होता है। मित्रों, काश कि मैं इस फिल्म के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उनके आधार पर आपसे बात कर पाता, लेकिन ऐसा पॉसिबल इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि मुझे मालूम है कि अगर मैं उन टुकड़ों के आधार पर इस फिल्म की आपको खूबसूरती बताऊंगा, इस फिल्म के मैसेज के बारे में बताऊंगा, इस फिल्म की गहराइयों से आपको जब परिचित कराऊंगा, तो डेफिनेटली चूंकि आपने वो टुकड़े देखे नहीं हैं इसलिए वो आपके समझ में नहीं आएंगे। और मैं मान करके चलता हूं कि आप लोगों ने ये फिल्म नहीं देखी होगी, क्योंकि अगर आपकी आज के नौजवान पीढ़ी ये फिल्म देखती तो ये फिल्म भी सुपरहिट होती, क्योंकि आज कोई भी फिल्म बिना आप लोगों के तो सुपरहिट हो ही नहीं सकती, कम से कम हिट ही हो जाती, लेकिन ये तो सुपर फ्लॉप हो गई। दोस्तों, नो डाउट कि जो एक्टिंग है वो रणबीर कपूर की एक्टिंग का तो कोई जवाब ही नहीं, और दीपिका तो अपने आप में बहुत अच्छी एक्ट्रेस ही है, दोनों का बहुत अच्छा मेल रहा है इसमें, बहुत अच्छी केमिस्ट्री रही है। और मेरा पर्पज उसके खासकर जो टेक्निकल पक्ष है, उसकी एक्टिंग है, उसकी फोटोग्राफी है, ये बताना भी नहीं है, मैं तो जीवन के बारे में आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहूंगा। फ्रेंड्स, ये जो पूरी की पूरी फिल्म है ये सच पूछिए तो हमारी आंतरिक यात्रा है, या आप कह लीजिए इनवर्ड जर्नी है। जब हम अपने को ढूंढने की कोशिश करते हैं, जब हम अपने को समझने की कोशिश करते हैं, एक तरफ तो हमारा ये संघर्ष चलता है, जो हम हैं उसको जीना चाहते हैं, उसको पाना चाहते हैं, दूसरी तरफ हमारी एक पैरेलल दुनिया है जो यथार्थ की दुनिया है, जिसमें हम रह रहे हैं, जिसमें हम इंटरेक्शन कर रहे हैं, और उससे हमें निभाना भी पड़ता है, हम उससे भाग नहीं सकते। मित्रों, आपको ध्यान होगा बहुत पहले मैंने आप लोगों से कभी चर्चा की थी कि हम एक साथ दो तरह की दुनिया में रहते हैं, दो वर्ल्ड में रहते हैं। पहला जो हमारा वर्ल्ड है, जो हमारी दुनिया है, वो इमेजिनरी वर्ल्ड है, हमारी कल्पना की दुनिया है जो हमने खुद रची है। मित्रों, चूंकि ये कल्पना की दुनिया जो है हमारी रची हुई है, हम इसके एक एक एलिमेंट को लाते हैं, खुद लेकर के आते हैं और खुद उसकी बुनाई भी करते हैं, तो स्वाभाविक है कि इसमें जो हम बुनावट के लिए जिन धागों का इस्तेमाल करेंगे वो बड़े रेशमी होंगे, बड़े कोमल होंगे, बड़े रंगीन धागे होंगे, और जब बुनावट भी हम उसकी बनाएंगे तो फिर अपनी पसंद का डिजाइन भी तैयार करेंगे। जैसे कि अगर कोई, मान लीजिए आपकी मां, बहन, चाची, कोई भी अगर आपके लिए स्वेटर बना रही हो, तो फिर आप अपनी पसंद के डिजाइन बता सकते हैं कि इस डिजाइन का स्वेटर बना दीजिए। तो यहां तो चूंकि सारा चयन हमें खुद ही करना है, तो बट नेचुरल है कि जो कल्पना की दुनिया हम रचते हैं, बनाते हैं, वो सबसे खूबसूरत दुनिया होती है, सबसे अच्छी दुनिया होती है, अनपैरेलल होती है, मतलब उसके समानांतर कोई दूसरी दुनिया रहती ही नहीं, होती ही नहीं। दूसरी वो दुनिया है दोस्तों जिसमें हम रह रहे हैं, जो हमारे सामने की दुनिया है, जिसके साथ हमारा रोज सामना होता है, जिसमें हम लड़ते झगड़ते हैं, जिसमें हम मेहनत करते हैं, जिसमें हमारी जो शक्तियां हैं वो सामने आती हैं, और साथ ही हमारी कमजोरियां भी सामने आती हैं। इसमें कुछ आंसू हैं तो कुछ मुस्कुराहट भी हैं, कुछ हंसी के ठहाके हैं तो रोने की दहाड़ भी है, मतलब इसमें सब कुछ है जो भी इस धरती पर हो सकता है, जो भी समाज में हो सकता है, या जो भी एक आदमी की जिंदगी में हो सकता है, वो सब कुछ हमारी इस दूसरी दुनिया में है। मित्रों, अब होता क्या है कि एक हमारी कल्पना की दुनिया है जिसमें हम अक्सर रहते हैं, और दूसरी हमारी सच्चाई की दुनिया है जिसमें हमको रहना पड़ता है, और हमारा जो भी व्यवहार है, जग व्यवहार है, वो इस यथार्थ दुनिया में होता है। मित्रों, हमारे जीवन का जो सारा संघर्ष है, जो सारा दुख है, जो तकलीफ और परेशानियां हैं, याद रखिए वो वास्तव में उतनी नहीं है जितनी हम समझते हैं। ये जो जब हमें जब अपनी परेशानियां ये जो इतनी ज्यादा दिखाई देती हैं कि अब ये नाकाबिले बर्दाश्त हो रही है, उसमें बहुत बड़ा योगदान, कंट्रीब्यूशन या जिम्मेदार आप कह लीजिए, योगदान नहीं कहें, हम कहें कि जिम्मेदार जो होती है हमारी कल्पना की दुनिया होती है। कारण यह है कि कल्पना की दुनिया हमने रची है जो बेहद खूबसूरत है, लेकिन जब हम इसको बाहर की दुनिया से मैच करते हैं तो वो मैचिंग नहीं हो पाती और फिर हमें ऐसा लगता है जैसे कि सारा कोई सपना टूट गया हो, रह वहां रहे हैं, रहना यहां पड़ रहा है। तो मित्रों, ये जो मानसिक जगत और ये जो भौतिक जगत, ये जो दोनों का जो टकराव होता है, दोनों में जो गिलगांव होता है, दोनों में जो जबरदस्त खाई बनती चली जाती है, वो हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा संकट होता है और सबसे बड़ा दुख होता है, जिसको मैं एक तरीके से इमोशनल बेस्ड वर्ल्ड कहता हूं। ये पूरी तरह से भावना पर आधारित दुनिया है। दोस्तों, ये जो फिल्म है तमाशा, ये इन्हीं दो दुनिया के बारे में है। कुल मिलाकर के कहानी इतनी है कि रणवीर कपूर और दीपिका, मैं एक्टर और एक्ट्रेसेस के नाम पर ही आपको बता रहा हूं, ये फ्रांस का एक द्वीप है, कोर्सिका द्वीप, वहां मिलते हैं और वहां बड़ा एक खूबसूरत वायदा करते हैं। दोनों मिलने के बाद वायदा करते हैं कि तुम न तो तुम अपने बारे में कोई भी मुझे कुछ भी बताओगे और न मैं तुम्हारे बारे में कुछ बताऊंगा, मतलब हम अब एक दूसरे को एक दूसरे के बारे में सच सच कुछ भी नहीं बताएंगे, कुछ भी नहीं बताएं, कहां के रहने वाले, क्या नाम है, क्या करते हैं, कुछ भी नहीं। और हम यहां खुले रूप में रहेंगे, निश्चिंतता के साथ रहेंगे, जो मर्जी आएगा करेंगे, घूमेंगे, और इसके बाद यहां से जाने के बाद हम अब कभी भी फिफ्ता उम्र नहीं मिलेंगे, कभी हम मिलेंगे ही नहीं। मित्रों, ये वायदा करते हैं और वहां कौरसिका द्वीप में वो खूब एंजॉय करते हैं, बिल्कुल खुले रूप में वो एंजॉय करते हैं, घूम रहे हैं, नदियों से, झीलों से पानी पी रहे हैं, घूम रहे हैं खूब। यह खुलापन था, यानी कि चूंकि दोनों को एक दूसरे के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, तो दिमाग में कोई दुराग्रह पूर्वाग्रह है ही नहीं और दोनों बिल्कुल निश्चिंत होकर के अपने जीवन को एंजॉय कर रहे हैं, फुल 100% दे रहे हैं, क्योंकि वो अपने नेचुरल स्टेट में है। यह उनकी एक दुनिया है जो कल्पना की दुनिया है, या कह लीजिए जो सच दुनिया है, लेकिन वो अपनी कल्पना से उनकी मेल खाती है। और इसके बाद जब वो दोनों लौटते हैं मित्रों, तो ये वायदा नहीं पूरा हो पाता कि दोनों मिलेंगे नहीं, संयोग कुछ ऐसा होता है कि दोनों मिल जाते हैं। और मिलने के बाद जब दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते भी हैं, और रणवीर कपूर जब उन्हें दीपिका को एक रिंग देना चाहता है जो एक तरीके से मंगनी की रिंग है, तो उसे साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि नहीं, मैं तो उससे प्यार करती थी जो कोर्सिका द्वीप में था, जो बड़े अपने नेचुरल स्टेट में था, जो बिल्कुल एकदम एकदम उन्मुक्त था, जो जानवरों की तरह नदी से बहते हुए नदी से पानी पी सकता था, लेकिन तुम तो यहां एक प्रोडक्ट मैनेजर हो, मतलब तुम आर्टिफिशियल हो, मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकती। और इसके बाद फिर वो रणबीर कपूर एक डिस्टर्ब होता है और फिर उसका सारा का सारा अंतर अनबैलेंस्ड हो जाता है और लास्ट में जाकर के फिर से अपने नेचुरल स्टेट को हासिल करता है। तो यहां जो मैं आपसे बताना चाह रहा हूं वो ये कि दीपिका के दिमाग में वो जो एक इमेजिनरी वर्ल्ड बना हुआ है जो कोर्सिका द्वीप का है, वो रियल लाइफ नहीं थी, वो एक थोड़ी देर के लिए किया गया समझौता था और वो उसी को जीने लगती है और बाद में पछताती है कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई, क्योंकि रणवीर कपूर उस ठुकराए जाने के बाद जब दीपिका उसे ठुकरा देती है तो बहुत डिस्टर्ब हो जाता है और फिर उसे स्वीकार कर पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन बाद में फिर से वो अपना रूपांतरण करता है, अपने पुराने मानसिकता को हासिल करता है और फिर जाकर के दोनों मिलते हैं और एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। मित्रों, बहुत अद्भुत कथा है इस फिल्म की। कुल मिलाकर के ये है कि इमेजिनरी वर्ल्ड वास्तविक वर्ल्ड नहीं होती है, जो दुनिया है वो यही दुनिया होती है। हां, हमें सबको अपने सार को पाना होगा, अपने इसेंस को पाना होगा, और जो व्यक्ति अपने इसेंस के जितने ज्यादा करीब रह सकेगा वह अपनी जिंदगी को उतना ही ज्यादा एंजॉय कर सकेगा और सच पूछिए तो अपनी कैपेसिटी को भी उतने ही अधिक ऊंचाइयों तक ले जा भी सकेगा। मित्रों, मैं सजेस्ट करूंगा कि यदि आप लोग देख सकते हो तो इस फिल्म को देखें, लेकिन मुझे कोसिएगा बिल्कुल मत, क्योंकि फिल्म आपको बोरिंग लग सकती है, लगभग लगभग तीन घंटे, मतलब पौने तीन घंटे की फिल्म है, आप ऊब सकते हैं, आप सो सकते हैं, आप मुझ पर आरोप लगा सकते हैं कि सर ने कहां फंसा दिया है, बहुत कुछ आपको फिल्म में समझ में भी नहीं आएंगी, कभी 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 आपको ऐसा लगेगा, क्योंकि वो एक ट्रेडिशनल स्टोरी फिल्म की नहीं है, डायरेक्शन भी बड़े डिफरेंट तरीके का है, इसके प्रतीक अर्थ बहुत ज्यादा हैं, इतने खूबसूरत इसके प्रतीक अर्थ हैं कि मैं बता नहीं सकता, लेकिन अगर उन प्रतीकों की मैं चर्चा करूंगा तो आप उसे समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि आपने वो फिल्म देखी नहीं है तो आपके काम की नहीं होगी। लेकिन ये फिल्म सच पूछिए तो देखने की नहीं है, ये फिल्म पढ़ने की है। आपको थोड़ा सा साहस जुटाना होगा, धैर्य रखना होगा, तभी आप इस फिल्म को देख पाएंगे। लेकिन अगर आप इस फिल्म को देखने के बाद सोचना शुरू करेंगे तो आपको लगेगा कि जैसे जिंदगी की कोई बहुत बड़ी फिलॉसफी वाली किताब आप देखकर आ रहे हैं, ये सोचने के लिए आपको बाध्य कर देगी। लेकिन ऐसा तब होगा जब आप इंटरटेनमेंट के उद्देश्य से फिल्म न देख करके सही मायने में कुछ समझने और पाने या विचार करने के उद्देश्य से इस फिल्म को देखेंगे। तो मित्रों, आप लोग इस फिल्म को देखिए और फिर मुझे बताइए, और अगर जब मैंने जरूरत समझा ठीक समझा, और अगर आप लोगों ने ये फिल्म देखी तो हो सकता है कि इनके कुछ मुद्दों पर हम और भी बात करें। लेकिन एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि दो आप लोगों के दोस्तों जो एसे का जो पेपर होता है, जो निबंध का पेपर होता है, उसमें सबसे बड़ी जो ताकत होती है वो ये है कि आपका जो स्फीयर ऑफ स्टडी है, जो अध्ययन करने का जो क्षेत्र है, या जो जिंदगी के बारे में जो समझ है, समाज के बारे में जो समझ है, जिंदगी के जो डिफरेंट एरियाज हैं, फील्ड हैं, उनके बारे में जो आपकी समझ है वो कितनी व्यापक है, कितनी तरह की किताबें आपने पढ़ी हैं, कितनी तरह की फिल्में आपने देखी हैं, कितने तरह के व्यापक अनुभव आपके पास हैं, वो सारे मिलकर जब आपके एसे में उतरते हैं तो वो एसे, वो निबंध बिल्कुल अद्भुत होता है। और मुझे लगता है कि जो तमाशा फिल्म है ये एसे के लिए आपको बहुत महत्वपूर्ण कंटेंट प्रोवाइड कर सकती है, खासकर जो आपका एसे का पार्ट ए होता है उसके लिए। तो मित्रों, अब मैं आता हूं कल के AIR न्यूज पर। सच पूछे दोस्तों तो मैं इस संकट में हूं कि इस AIR न्यूज में मैं किन बातों को लेकर के आपसे आज चर्चा करूं, लेकिन चर्चा तो करनी ही है, और ऐसा भी तो होता नहीं है कि हम चर्चा ही ना कर सके, क्योंकि आफ्टर ऑल 15 मिनट की न्यूज थी। तो मित्रों, आज अगर हम उस तरह से बड़ा ये क्रूड न्यूज के रूप में देखें, बड़ा हार्ड न्यूज जिसको आप कहते हैं, तो हार्ड न्यूज के रूप में तो कुछ भी ऐसा नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी द्विमासिक जो मॉनेटरी पॉलिसी डिक्लेयर की, उसमें सीधी सी बात है कि सारी चीजें एज इट इज हैं, कुछ बदलाव नहीं हुआ है, इसलिए उस पर भी कोई बात करने के लिए विशेष नहीं है। फिर भी न्यूज में जो आपने कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ी, जिनके बारे में लगभग 2 महीने में मैं आप लोगों को दोहरा ही देता हूं, इसलिए मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा कि रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, SRR, ये जो जितनी भी टर्मिनोलॉजी हैं, आपको चाहिए कि आप लोग इन टर्मिनोलॉजी को बहुत अच्छे तरीके से देख लें, पढ़ लें। जो क्लासेज में स्टूडेंट आए थे उनको मालूम है कि इसके बारे में हम लोगों ने इस बात की थी, और सच ये है कि इसके बेसिक्स को भी हमने समझा था कि इससे पूरी की पूरी इकोनॉमी पर किस तरीके का इंपैक्ट पड़ता है, इसलिए मैं अब उसे यहां दोहराना नहीं चाहूंगा। जो इसके बाद एक खबर तमिलनाडु की है, आप देख रहे हैं कि तमिलनाडु में पिछले 100 साल से बारिश का रिकॉर्ड टूटा है, और कितनी बुरी तरह की बारिश से वहां का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, सेना तक बुलानी पड़ी है। तो मित्रों, ये अब कोई ऐसी खबर नहीं है जिसको लेकर के हम अलग से बातचीत करें, लेकिन आप लोगों को ध्यान होगा कि 2 सप्ताह पहले मैंने आप लोगों को नॉर्थ ईस्ट मानसून पर एक टिप्पणी लिखने के लिए दिया था, खासकर जो मैं वीकली क्वेश्चन देता हूं, तो उसका रिलेशन इसी से ही है। तो आप उसको केंद्र में रख करके उस, मुझे यकीन है कि उस प्रश्न को आप लोगों ने हल किया होगा, और अगर नहीं किया हो तो मुझे लगता है कि आपको करना चाहिए, क्योंकि मुझे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये मालूम पड़ रहा है, खासकर तमिलनाडु में हुई इतनी ज्यादा बारिश के को देखते हुए। जिन पर हम लोग, जिस टॉपिक पर हम लोग थोड़ी बहुत आज बात कर सकते हैं फ्रेंड्स, वो है खासकर संविधान को लेकर। आप देख रहे हैं कि जो हमारा संसद का सत्र शुरू हुआ है, तो पहले तो 2 दिन कॉन्स्टिट्यूशन डे को ही ऑब्जर्व किया गया और उस पर बहस हुई, और इसके बाद अब सहिष्णुता पर फिर बहस होने लगी। और सच पूछिए तो जो टॉलरेंस पर भी जो बहस हुई, इंटॉलरेंस पर जो बहस हुई असहिष्णुता के मामले को लेकर के स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से आया था, तो उसमें भी कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत बड़ा भाग था। इनफैक्ट वो भी एक तरह से कह लीजिए कि जो कॉन्स्टिट्यूशन पर चर्चा हो रही थी उसी का और अलग नाम से एक्सटेंशन था, उसी का एक विस्तार था। तो मित्रों, आज कल जब आपने न्यूज सुनी होगी तो आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे तथ्य न्यूज में बताए गए जिनको आप संविधान की आत्मा कह सकते हैं, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है मित्रों? देखिए, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को आप कह सकते हैं किसी भी मकान की नींव है वो, या हमारे शरीर की रीढ़ की हड्डी है। मतलब वो नींव एक ऐसी है या आत्मा एक ऐसी है कि अगर आप उसको निकाल लेते हैं तो बाकी फिर ढांचा ढांचा रह जाएगा, उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता है। तो भारतीय संविधान की आत्मा क्या है? फ्रेंड्स, आप लोगों को शायद पता नहीं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कि मैंने चर्चा की थी या नहीं की थी, कि 1975 में जब इमरजेंसी लगाई गई देश में, पूरे देश में जब आपातकाल लगाया गया, तो 1976 में संविधान में एक संशोधन प्रस्ताव लाया गया था जिसको 42nd अमेंडमेंट कहते हैं। उस 42nd अमेंडमेंट के माध्यम से संविधान में काफी कुछ बदलाव किए गए, और सच पूछे तो वो बदलाव कुछ इस तरीके के थे कि जिसको ये माना गया कि कहीं ऐसा नहीं कि ये बिल्कुल संविधान को ही तोड़ मरोड़ दिया जाए। इसके बाद जो दूसरी सरकार आई, फिर 44th अमेंडमेंट के माध्यम से उसकी बहुत सी चीजों को उसने रीस्टैब्लिश किया, फिर से वो लेकर के आए। इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह बहुत क्लियर कट डिसीजन दिया कि संसद को यह अधिकार नहीं है कि वो संविधान की आत्मा में परिवर्तन करे। मतलब आप संविधान में संशोधन कीजिए, नो डाउट अभी आप देख लीजिए कि संविधान में लगभग 100 संशोधन तो हो चुके हैं। अभी जो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के लिए जो बिल लाया गया था वो 100वां संशोधन विधेयक था। यह बात अलग है कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसे टर्न डाउन कर दिया तो वो पारित नहीं हो सका, अदरवाइज 100 बार संविधान में संशोधन किए जा चुके हैं। मतलब 68 ईयर्स में 100 टाइम्स, यानी कि हर साल औसतन 1.5 संशोधन संविधान में हो रहे हैं। ये जितने भी संशोधन हो रहे हैं, जो 100 मैं आपको बता रहा हूं, आप मान करके चलिए कि ये हमारे समय की जरूरत को पूरा करने के हिसाब से जो नई चीजें होनी चाहिए थी या पुरानी चीजें बदली जानी चाहिए थी उसी के आधार पर किए गए संशोधन हैं। लेकिन जो हमारी संविधान की जो मूल आत्मा है वो अभी ज्यों की त्यों बनी हुई है, और वो ज्यों की त्यों बनी ही रहेगी, उसमें कोई भी परिवर्तन संभव नहीं है। उसे सुप्रीम कोर्ट टर्न डाउन कर देगी, उसके पास ये अधिकार है। यानी कि संविधान की आत्मा में संशोधन करने का अधिकार सच पूछिए तो अब किसी के पास नहीं है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ही क्यों ना हो। यानी कि हमारा जो संविधान है वो ज्यों का त्यों अपनी आत्मा के रूप में, अपने मूल चरित्र के रूप में बना रहेगा। तो फ्रेंड्स, सवाल पैदा होता है कि ये मूल आत्मा कौन सी है। मैं आपको खासकर दो बातें बताना चाहूंगा, वैसे इससे अलग भी हैं कुछ चीजें, सारी चीजें यही नहीं है, लेकिन दो सबसे बड़ी जो आत्मा को रिप्रेजेंट करते हैं हमारे संविधान की, एक हमारे संविधान के उद्देश्य का जिसके हम प्रियम्बल कहते हैं। आप देखिए कि प्रियम्बल का जो शुरू का शब्द है, हम भारत के लोग, और फिर कृत संकल्प है, और बीच के जितने भी हिस्से हैं उन सब में यही बताने की कोशिश की गई है कि उस पूरे के पूरे संविधान में हम क्या करने जा रहे हैं। उसमें जितनी भी बातें कही गई हैं वो उस संविधान के चरित्र के बारे में ही बातें कही गई हैं कि हम इस तरह का संविधान बना रहे हैं। वो संविधान के कौन कौन से चरित्र हैं? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, सॉवरेन कंट्री होगा, कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं बर्दाश्त होगा। फिर है सोशलिस्ट, समाजवादी। इसके बाद है पंथ निरपेक्ष, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, लोकतंत्रात्मक। फिर है गणराज्य, रिपब्लिक होगा। फिर जस्टिस के बारे में वो बता रहे हैं कि सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, यानी कि सोशल, इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल जस्टिस। फिर जब फ्रीडम की बात आती है, लिबर्टी की बात आती है, तो कौन कौन सी लिबर्टी की बात करें? विचार, थॉट्स, अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन, विश्वास, बिलीफ, धर्म, फेथ एंड वर्शिप, उपासना की स्वतंत्रता। आप देखेंगे दोस्तों कि यहां जो हिंदी में जो धर्म शब्द है उसकी जगह पर इंग्लिश का शब्द रखा गया है, फेथ, रिलीजन नहीं रखा गया है। इसके बाद है समता, इक्वालिटी। इक्वालिटी कौन कौन सी? प्रतिष्ठा और अवसर की समता, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। और और उसके आगे क्या जोड़ा गया, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाना, यह हमारे संविधान की दोस्तों आत्मा है। और इस पूरे की पूरी आत्मा को, संविधान की आत्मा को एक्सप्रेस करने के लिए या इसकी पूर्ति के लिए पूरा का पूरा संविधान का ढांचा खड़ा किया गया है। और जिसके अंदर फिर दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण जो बात आती है वो आती है हमारे फंडामेंटल राइट्स की, यानी कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो भी कहीं ना कहीं संविधान की आत्मा को एक्सप्रेस करते हैं। यानी कि कोई भी ऐसा संशोधन संविधान में, कोई भी ऐसा बदलाव नहीं हो सकता जो इस उद्देशिका के अगेंस्ट हो और इसके बाद फिर वो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हो। लेकिन यही सब कुछ नहीं है मित्रों, और भी हमारे यहां बहुत सी चीजें हैं जिसको हम एक तरीके से कहीं ना कहीं हम अपने संविधान की आत्मा के रूप में लेते हैं। उसमें बहुत से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट्स भी हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी हैं, उसमें सेपरेशन ऑफ पावर भी है जिसमें लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की अलग अलग शक्तियों का विवरण है, फ्रीडम ऑफ जुडिशरी भी है। अपने आप में देखा, अभी आपने देखा कि किस तरह से जो राष्ट्रीय नियुक्ति आयोग की का जो गठन होना था उसको सुप्रीम कोर्ट ने इसी आधार पर टर्न डाउन किया है कि ये सुप्रीम कोर्ट की जो स्वतंत्रता है उस पर बाधा डालेगी और हमारे संविधान की आत्मा के विरुद्ध है। तो मित्रों, मेरे कहने का मतलब अभी फिलहाल सिर्फ इतना है कि जो हमारे संविधान का जो मूल चरित्र है, हमारे संविधान की जो आत्मा है, उस पर आपकी बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए। क्योंकि एक बार यदि आप इसके संविधान के बेसिक्स को समझ लेते हैं तो फिर आप देखेंगे कि आपको, खासकर जब पॉलिटिकल साइंस से कोई भी या कॉन्स्टिट्यूशन पर बेस्ड कोई भी जब क्वेश्चन आएगा, स्पेशली जनरल स्टडीज के फर्स्ट सेकेंड पेपर में, मेंस में, तब आप उसे बहुत सही डायरेक्शन में एक बहुत अच्छे फोकस के साथ सॉल्व कर सकेंगे। तो दोस्तों, आज न्यूज के बारे में इतनी ही। अब मैं आता हूं न्यूज पेपर्स की क्लिपिंग्स पर। एक दैनिक भास्कर की क्लिपिंग्स है दोस्तों डिजिटल इंडिया के बारे में। तो डिजिटल इंडिया में इन्होंने कुछ बहुत अच्छे डेटा दिए हैं, मैंने अंडरलाइन कर दिया है, आप देख लीजिएगा। मतलब इसमें इन्होंने बताया कि अभी भी भारत में मात्र 18% लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि दुनिया में सच पूछे तो 43% लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पूरी दुनिया 43% इंटरनेट पॉपुलेशन 43% इस्तेमाल कर रही, जबकि हम अभी केवल 18% कर पा रहे हैं। और डेफिनेटली उसका रीजन भी है कि एक तो हमारे यहां गरीबी बहुत है, दूसरी यह है कि शिक्षा का स्तर भी काफी कम है, अभाव है शिक्षा का स्तर की क्या बात करें हम। फिर जैसे बिजली जैसी जो बुनियादी चीजें इसके लिए होती हैं वो भी नहीं है। तो ऐसे में इन्होंने क्वेश्चन किया है कि जो डिजिटल इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे फुलफिल हो सकता है, तो क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, उसके बारे में इन्होंने चर्चा की है। ये नॉलेज सेंटर पर अवेलेबल होगा, आप देख लेंगे। दैनिक भास्कर में ही मित्रों एक बहुत अच्छा आर्टिकल है गुरुचरण दास जी का, जिनके बारे में मैं अक्सर आपको बताता रहता हूं कि बहुत अच्छा लिखते हैं, खासकर इकोनॉमिक इश्यूज पर बहुत अच्छा लिखते हैं। आपने मल्टीनेशनल कंपनीज में काम किया हुआ है तो बड़े अनुभव के स्तर के उच्च स्तरीय अधिकारी रहे हैं, और उनके थॉट्स भी मुझे बड़े ओरिजिनल किस्म के लगते हैं, बड़े प्रैग्मेटिक लगते हैं, व्यापारिक लगते हैं। ये बात अलग है कि वो अपने विचारों में पूरी तरह से जो खासकर ग्लोबलाइजेशन है उसका समर्थन करते हैं, या आप कह लीजिए कि कैपिटलिस्टिक अप्रोच के हैं, लेकिन वो उनकी बात है, आप उसे किस तरीके से लेते हैं, उनकी बातों को कैसे एनालाइज करते हैं ये आपके ऊपर है, लेकिन गुरुचरण दास जी को पढ़ा जाना चाहिए। तो ये दैनिक भास्कर का जो आर्टिकल है ये मैं नॉलेज सेंटर पे प्रोवाइड कर रहा हूं। इसमें इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही है जो खासकर मैं आप लोगों के ध्यान में लाना चाहूंगा। उन्होंने ये कहा है कि कुछ देशों में ऐसा है, खासकर ब्रिटेन जैसे देशों में, वहां होता क्या है कि जैसे अपने यहां पार्लियामेंट के 5 साल में चुनाव होते हैं, तो इन्होंने दिया कि पार्लियामेंट के जो चुनाव हों वो 5 साल में हों और राज्यों के जो चुनाव हों वो 2.5 साल, मतलब 5 साल का टेन्योर उनका भी होगा। तो एक बार अगर पार्लियामेंट का चुनाव हो गया ठीक है, अब 5 साल बाद पार्लियामेंट का चुनाव होगा, तो पार्लियामेंट के चुनाव के 2.5 साल के बाद राज्यों के चुनाव कराए जाए और फिर राज्यों के फिर 5 साल के बाद हो, तो इस प्रकार हर 2.5 साल के बाद एक चुनाव होगा पार्लियामेंट, ये पहले पार्लियामेंट का होगा फिर राज्यों का होगा। फिर उन्होंने दिया कि मान लीजिए कि बीच में कोई सरकार गिर गई, अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया और सरकार गिर गई, तब क्या होगा, गड़बड़ी तभी होती है। तो इन्होंने बहुत अच्छा सुझाव दिया है कि ऐसे में सदन को भंग नहीं किया जाना चाहिए, संसद या विधानसभा भंग नहीं की जानी चाहिए, बल्कि जो रिमेनिंग पीरियड है, जो समय बच गया है, उसको फिर सांसद और विधायक आपस में मिलकर के सरकार बनाएं, और ये उनकी मजबूरी हो कि वो सरकार बनाएं, और यदि किसी वजह से सरकार नहीं बन पाती है तो रिमेनिंग पीरियड में फिर वो राष्ट्रपति शासन का सामना करें, राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, लेकिन इसको एक सिस्टम में ढाल दिया जाए। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि इन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही है, बड़ी अच्छी बात कही है, और खासकर देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर इनके काफी अच्छे विचार हैं। ये आप लोग डिटेल में पढ़ लीजिएगा, मैं उनकी चर्चा नहीं कर रहा हूं। दोस्तों आज क्लिपिंग्स काफी हैं, इकोनॉमिक टाइम्स की दो क्लिपिंग्स हैं, पेरिस में जो जलवायु सम्मेलन हो चल रहा है उस पर दो क्लिपिंग्स हैं, बैंकों में जो वसूली नहीं हो पा रही है पैसे की उस पर एक राष्ट्रीय सहारा का अच्छा आर्टिकल है, और खासकर पिछले 3 सालों के दौरान भारत में क्या आर्थिक परिवर्तन हुए हैं और उनके क्या क्या नीतियों में बदलाव हुए हैं उस पर भी एक बहुत अच्छा आर्टिकल है बिजनेस स्टैंडर्ड का, वो हिंदी में है, तो वो आप लोग देख लेंगे। उनकी चर्चा में करना जरूरी यहां नहीं समझ रहा हूं। दोस्तों अब मैं आता हूं ईमेल पर जो इसका अंतिम चरण है। तो सबसे पहले मैं चंदन पांडे जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, उन्होंने लिखा है कि मेरी एक किताब है हनुमान चालीसा पर आई है, जीवन का महामंत्र हनुमान चालीसा, वो उनकी माँ को बहुत पसंद आया है, तो उन्होंने अपनी माँ की भावनाओं से मुझे अवगत कराया है। तो चंदन जी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप अपनी माँ से मेरा नमस्कार कहें कि उन्होंने इस मतलब ये जरूरी समझा कि कम से कम वो अपनी बात मुझ तक पहुंचाएं, इसके लिए मैं उनके प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। ये चंदन पांडे नवादा बिहार से थे। विकास जाखड़ हैं जो हमारे सेकेंड बैच के स्टूडेंट भी रहे हैं, जोधपुर बलोतरा जोधपुर से हैं। विकास ने लिखा है कि खासकर मैडम ने जो काउंसलिंग का शुरू किया है उसकी उन्होंने बड़ी प्रशंसा की है और इसके लिए बहुत आभार व्यक्त किया है एकेडमी का। तो मित्रों नो डाउट कि मैडम ने अपना ये समय देने का फैसला किया है और मैं चाहूंगा कि आप लोग इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं, अपनी समस्याएं उनसे डिस्कस करें। टाइमिंग्स बस का बस ध्यान रखेंगे, उनको उनसे बात करने के लिए सुबह 11 बजे से 12 बजे तक का समय है और फिर शाम को 6 बजे से 7 बजे तक का वक्त निर्धारित किया गया है। फोन नंबर मैं आप लोगों को पहले भी मैं बता चुका हूं कि किस नंबर पर बात कर सकते हैं, लेकिन फिर भी 2 दिन की बात हो गई, मैं फिर से एक बार मैडम का फोन नंबर आप लोगों को बता देता हूं। उनका मोबाइल नंबर, नाम है उनका डॉक्टर प्रीति अग्रवाल, और उनका मोबाइल नंबर है 9644624449। मैं रिपीट कर रहा हूं, 9644624449। मित्रों इसके बाद एक देवकांत मुदगल का मेल है आगरा से, उन्होंने लिखा है कि सर ये शायद फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं, इन्होंने जानना चाहे कि अगर इन्होंने अभी क्लास में एडमिशन कर ले लिया तो फिर 1 साल तक ही इनको स्पेशल ऑडियो मिल पाएगा और तब तक की परीक्षा में बैठने लायक नहीं होंगे, तो फिर आगे की तैयारी करने के लिए उनको क्या होगा। देवकांत मैं आपको बता दूं कि अभी आपको सिविल सर्विस की तैयारी के बारे में मालूम नहीं है, कोई बात नहीं, आपने प्रश्न किया है, जो एकेडमी है वो बेसिकली आपकी सिविल सर्विस की तैयारी नहीं कराती है, तैयारी कैसे करनी चाहिए इसी के बारे में बताती है, इसके बारे में ही बताती है। दूसरी चीज जहां तक स्पेशल ऑडियो का सवाल है, वो डेफिनेटली आपको 50 स्पेशल ऑडियो मिलेंगे और उसका भी पर्पज आप में एक कैपेसिटी बिल्डिंग करना है, आपकी कैपेसिटी को बढ़ाना है। आपकी सिविल सर्विस की तैयारी कोई दूसरा नहीं करा सकता, याद रखिए वो आपको खुद ही करनी पड़ेगी, बस आपको जानना ये चाहिए कि आपको तैयारी करनी कैसे है। तो जो 50 स्पेशल ऑडियो भी होंगे वो उसी पर्पज से आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, आप ये मत समझिएगा कि उससे आपका कोर्स पूरा हो जाएगा, तो इसलिए ऐसा कोई कारण नहीं है कि आप इस मन में किसी तरह का भय पालें कि बाद में कैसी तैयारी होगी, वो तो आप सीख जाएंगे और खुद ही आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो मित्रों अब मैं उन सबके प्रति धन्यवाद व्यक्त करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने ईमेल लिखे हैं, और इनमें से कुछ दोस्तों के नाम हैं, कृपेश कुमार अहमदाबाद से, रघुनाथ चौधरी सिरोही से, राम सोनी भिंड से, सत्यम रंजीत प्रसाद सिंह दिल्ली से, संजीव कुमार दिल्ली से, राज दवे गुजरात से, अंकित कुमार, आनंद विकास और अभिजीत, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। मित्रों अब हम लोग कल मिलेंगे, नमस्कार।